शांति। आज 3 अगस्त 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा, कैसे मीठे बच्चे। याद की यात्रा में टाइम देते रहो। याद की यात्रा अर्थात परमात्म याद में अपनी सुधार करने को कहा जाता है याद की यात्रा। कितना सुधार मेरे में आ रहा है, इसमें टाइम देना है। हर पल मेरे में सुधार आए, परिवर्तन आए, तब हम हैं याद की यात्रा पर। तो विकर्म विनाश होते हैं। जब हम अपने आप को सुधारते जाएंगे तो हमारे विकर्म होना रुक जाएंगे और साथ साथ सुधार के साथ विकर्म जो हम पहले कर चुके हैं उनको सामना करने की शक्ति भी हमारे पास आती जाएगी। सबसे ममत्व मिट जाएगा, अपने देह से भी ममत्व मिट जाएगा और देह के संबंधियों से भी, और जो कुछ हमें आंखों से दिखाई देता है उनसे भी हमारा ममत्व मिट जाएगा और बात के गले का हार बन जाएंगे। बात के गले का हार बनना अर्थात वैजंती माला का मणका बन जाएंगे। प्रश्न, गॉडफादर द्वारा तुम बच्चे किन दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो और उन दो शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? उत्तर, गॉडफादर तुम्हें इतना ही पढ़ाते हैं कि हे आत्माएं, इस शरीर का भान छोड़ो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो। मुझे याद करो अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। ये दो शब्दों की पढ़ाई है। ये इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में, पुरानी खाल में नहीं रहना है। अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया और पुरानी खाल में नहीं रहना है। तुम्हें नई दुनिया में जाना है। अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने के लिए आया हूं, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, केवल और केवल मेरी श्रीमत पर चलो। देख, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चे, सालिग्राम अर्थात आत्माएं जानती हैं कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते। हमारा कोई गुरु नहीं जो हमें बैठकर शास्त्र सुनाए। इसको सत्संग नहीं कहा जाता। दुनिया के जो सत्संग हैं वो है ही झूठ संग, क्योंकि वहां कोई भी सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। वे देहधारियों को, मूर्तियों को परमात्मा समझते हैं, शास्त्रों को पढ़ना सत्संग समझते हैं। इसको सत्संग नहीं कहा जाता, केवल कोई शास्त्र पढ़ना नहीं कहा जाता। यहां तो बाप बैठकर पढ़ाते, इसे पढ़ाई कहा जाता है। अगर मनुष्यों से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम सत्संग में जाते हैं, वह हम सत्संग में जाते हैं, वह कहेंगे कि हम कॉलेज में जाते हैं। ये तो जानते हो सत्संग में साधु संत विद्वान आदि सुनाने वाले होंगे, और स्कूल में भी पढ़ाने वाला कोई ना कोई मनुष्य टीचर प्रोफेसर देदारी होंगे। और यहां मनुष्य नहीं है, ये पढ़ाने वाला है बेहद का रूहानी बाप, जिसको कहा जाता है त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा तुम। ये महिमा देवताओं की भी नहीं है, ये महिमा ब्रह्मा विष्णु और शंकर की भी नहीं है, ये महिमा है निराकार परम पिता परम आत्मा की। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को हम पिता नहीं कह सकते, माता नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये सूक्ष्म वतनवासी हैं, ये तीनों सूक्ष्म वतनवासी हैं। इस साकार वतन में आता है तो प्रजा पिता ब्रह्मा, वो भी पिता नहीं बन सकता, क्योंकि वे भी परम पिता परमात्मा की संतान आपका बड़ा भाई है। और विष्णु को कभी भी प्रजापिता या शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, वे जीव आत्माओं का पिता है, और मैं हूं सारे संसार की आत्माओं का पिता। और ये महिमा है निराकार परम पिता परम आत्मा की। आप बच्चे जानते हैं कि निराकार परम पिता परम आत्मा ये शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं, सिवाय इस परम पिता परम आत्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते। ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वे भी ज्ञान सागर से ज्ञान ले रहे हैं। ज्ञान सागर एक ही निराकार परम पिता परम आत्मा को कहा जाता है, वो पतितों को पावन बनाने वाला है, क्योंकि ज्ञान सागर से ही सदगति होती है। ये है नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से गीता को खंडन कर दिया है। अब मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि नॉलेजफुल परम पिता परम आत्मा आकर नॉलेज देते हैं? ये मनुष्य भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र आदि द्वापर के आदि में ही बनते हैं, नहीं, समझाया जाता है पहले बाप का चित्र मंदिर आदि बनाते हैं, जिससे भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी बहुत समय परमात्मा की होनी चाहिए, इसलिए शिवलिंग की ही भक्ति शुरू होती है। ऊंचते ऊंच वह है, उसकी पूजा पहले शुरू होती है। पूजा लायक है ही एक शिव, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर व जगत अम्बा और जगत पिता पूजा के लायक हैं। ये पांचों के पांचों पूजा के लायक नहीं है, ना ब्रह्मा पूजा के लायक है, ना जगत अम्बा पूजा के लायक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों विद्यार्थी हैं। ये जब संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, जब ये विष्णु व श्री कृष्ण बनते हैं, तो श्री कृष्ण के रूप में ये संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, तो श्री कृष्ण पूजा के लायक बनता है। विष्णु तो कोई देहधारी है नहीं, शंकर कोई देहधारी है नहीं, ब्रह्मा भी कोई देहधारी है नहीं, उन्होंने किसी को भी पावन बनाने का कोई कार्य किया ही नहीं, ना ही वो पवित्र बने, ना उन्होंने पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ किया तो दादा लेखराज ने प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में, और जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है वहां तो कोई जन प्रजा ही नहीं है, वहां कोई जीवन ही नहीं है। तो सूक्ष्म वतन वासी तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिन्होंने स्थूल में कोई पाठ नहीं बजाया, स्थूल में पाठ बजाया तो प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में, वो भी एक विद्यार्थी के रूप में, और जगत अम्बा भी एक स्टूडेंट या विद्यार्थी के रूप में। तो इन पांचों की पूजा नहीं, ये पूजा के लायक, जगत पिता पूजा के लायक हैं। इन सब को पूज्य बनाने वाला एक ही बाप है, उनकी भक्ति भी जरूर अधिक होगी। ये ब्रह्मा तो कुछ नहीं, इनमें परमपिता परमात्मा ना आए तो इनकी पूजा क्यों होगी? परमात्मा ने आकर प्रजापिता ब्रह्मा को संपूर्ण बनाया, जगत अम्बा को संपूर्ण बनाया, तो इन दोनों की संपूर्णता पर ही पूजा होती है। इन्होंने संपूर्ण बनने में जो सहयोग दिया उसके कारण पूजा होती है, परंतु ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों ने संपूर्ण बनाने में किसी को भी कोई सहयोग नहीं किया। भक्ति मार्ग वाले इनको देवता समझते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इसलिए बाबा यहां कहते हैं कि इनकी पूजा होती है। ज्ञान मार्ग के आधार से इन तीनों की, और ब्रह्मा का तो एक ही मंदिर है, आज भक्ति मार्ग में उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। और जगत माता भी हम ध्यान से देखें तो दो हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी जगत माता है और छोटी जगत माता सरस्वती है। तो जगत अम्बा की भी पूजा इसी कारण होती है कि वह सबको पावन बनाने में सहयोग देती, परंतु सदगति दाता तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जगत पिता और जगत अम्बा। इन दोनों में से भी केवल दो, जगत पिता और जगत अम्बा, हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के साथ सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देने में सहयोगी बनते, दिलाने में कहेंगे, देना नहीं, देना तो काम शिव बाबा का है, परंतु दिलाने में ये सहयोगी बनते। ये विचार सागर मंथन करना है। जब तक इन बातों पर बैठकर मनन चिंतन नहीं करेंगे तब तक ये बातें बुद्धि में बैठेंगी नहीं। ये भक्ति शुरू कैसे होगी? शिव बाबा तो विचार सागर नहीं मंथन नहीं करते। शिव बाबा क्यों विचार सागर मंथन नहीं करते? क्योंकि वे परम अवस्था में रहते हैं, परम धाम में रहते हैं, उन्हें कभी संकल्प नहीं करना पड़ता। जिस समय उन्होंने जो कहना है, जो बोलना है, वो करना है, वो करेंगे, वो बोलेंगे, परंतु ये कभी भी संकल्प नहीं चलाते कि आज बच्चों को क्या सिखाएं, क्या पढ़ाएं, क्या बताएं। ये बुद्धि ब्रह्मा बाबा को चलानी पड़ती है, ये मनन चिंतन हम बच्चों को करना पड़ता है, परंतु शिव बाबा को कभी भी विचार सागर मंथन नहीं करना पड़ता। इसलिए वो कहते हैं कि मैं यहां होते हुए भी परम अवस्था में हूं, परम धाम में हूं, क्योंकि मुझे संकल्प नहीं चलाना पड़ता। इसलिए मैं यहां होते हुए भी क्या हूं? परम अवस्था में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़ता है। सरस्वती जो ब्रह्मा की मुख वंशावली है उनको भी विचार सागर मंथन करना है। ऊंच के ऊंच है एक, अगर वो ना आए तो दुनिया को पतित से पावन कौन बनाए? सब मनुष्य मात्र पतित है। अब शिव बाबा ना आए तो स्वर्ग का वर्षा कौन देवे? निश्चय बुद्धि नहीं है तो विजय माला में पिरो ना सके। सपूत बच्चे सदैव गले का हार बनते हैं, पवित्र बनते हैं, धारणा करते हैं, विजयी बनते हैं, तब विजयंती माला का मणका बनते हैं। बाप भी खुश होते हैं, ये बच्चा बड़ा सपूत आज्ञाकारी है। बहुत माँ बाप होते हैं जिनको 12-14 बच्चे भी होते हैं, जिनमें कोई कपूत कोई सपूत भी होते हैं। पतित पावन बाप के सिवाय पतितों का उद्धार कोई कर ना सके। पतितों का बाप के सिवाय कोई उधार कर नहीं सकता। बाप भी खुश होते हैं ये बच्चा, किस बच्चे के लिए? ब्रह्मा बाबा के लिए बड़ा सपूत आज्ञाकारी। और बहुत माँ बाप होते हैं जिनको बेशक कितने बच्चे हों जिनमें कोई सपूत और कोई सपूत होते। तुम जानते हो कि गंगा नदी पर भी गंगा का मंदिर है। एक बार आरती जमुना गंगा जी की तरफ घुमाते हैं और एक बार आरती गंगा जी की मूर्ति की तरफ घुमाते हैं। तो समझना चाहिए कि ये गंगा सिर्फ कौन है, बहता हुआ पानी है या किनारे पर रखी हुई मूर्ति है? क्या ये कोई शक्ति है? क्या ये कोई शक्ति है जिससे पतित से पावन बनते हैं? वाह, पानी से पावन बनते हैं। बाप कहते हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं, गंगा जो है वो पतित पावनी नहीं, सिवाय योग के कोई भी पावन बन नहीं सकते। गंगा से केवल शरीर भी साफ हो जाए यही बहुत है। कोई भी गंगा में स्नान करने से आज तक पावन बना नहीं। तुम्हें कोई अब गंगा स्नान नहीं करना है। योग का अर्थ है याद, योग है भक्ति मार्ग का शब्द, याद है ज्ञान मार्ग का शब्द। याद का अर्थ है परमात्मा को याद करना, और याद उसे किया जाता है जिससे प्यार होता है। याद उसे किया जाता है जिससे प्यार होता है, और प्यार का सबूत होता है जब कोई किसी से कहता है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, तो वो पूछता है तुम मेरा इतना सा भी कहना नहीं मानते, क्या प्यार करते हो? तो बाबा कहते मेरे से तुम प्यार करते हो उसका सबूत क्या है? तुम मेरा कहना कितना मानते हो? तो याद करना अर्थात परमात्मा का कहना मानना, बाबा का कहना मानना, बुद्धि का योग लगाना अर्थात बुद्धि से जो ईश्वरीय डायरेक्शन मिला है, बाबा का जो ज्ञान मिला है, वो बैठकर अपने आप को समझाना, ना कि गीत सुनना, ना कि कमेंट्री सुनना, ना कि बाबा के चित्र के आगे बैठना। बुद्धि द्वारा अपने आप को समझाना कि मेरे में क्या क्या कमी है, उसे कैसे मैं निकालूं, बाबा की श्री मत पर कैसे मैं वो अपने जीवन में परिवर्तन ला। ये है बुद्धि का योग लगाना। वो तो बहुत योग आसन आदि लगाते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, उनको योग नहीं कहा जाता। माताएं अबलाएं हठ योग को क्या जाने? मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें धक्के खाने की कोई बात ही नहीं रहती। कोई ना कोई इम्तिहान पास करते हैं, जानते हैं कि ये इम्तिहान पास करके ये बनेंगे। यहां तो तुम जानते हो ये भी इम्तिहान है, गॉड फादर पढ़ाते हैं, वो है पतित पावन। तुम्हारी है गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ। बाप पतित से पावन कैसे बनाते हैं? कहते हैं हे आत्माएं, हे आत्माएं, इस शरीर का भान छोड़ो। इस पुराने शरीर को छोड़ना है। पहले पहले तुम्हारा शरीर गोरा था, अब आयरन एज्ड हो गया है, अभी तुमको नई खाल तो यहां लेनी नहीं है, नई खाल तो यहां लेनी नहीं है, अर्थात अब तुम्हें नया शरीर यहां नहीं लेना है। परंतु किसी का शरीर छूटेगा तो लेगा, किसी का भी शरीर छूटेगा वो यहां लेगा। ये मुरली 69 से पहले चली थी। उस समय जो बाबा के सामने बच्चे बैठे थे वो एडवांस स्टेज में जाने वाले होंगे, इसलिए बाबा ने उनको कहा कि अब आपका जन्म जो होगा वो सतयुग में होगा, क्योंकि आत्मा श्री कृष्ण के साथ जिन्होंने स्टेज में, फाइनल स्टेज में, अव्यक्त स्टेज में पहुंचकर जन्म लिया, वे आत्माएं अभी सतयुग में हैं। इसलिए उनका जन्म श्री कृष्ण के साथ हुआ, तो वो सतयुग में, क्योंकि यहां तो पांच तत्व ही तमो प्रधान है। अभी मैं तुम बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा, सारे संसार की आत्माओं को, श्री कृष्ण की आत्मा हो, उनके साथ जन्म लेने वाली आत्माएं हो, सभी आत्माओं को बाबा कहते मैं अपने साथ ले जाऊंगा। कल पहले भी ले गया था, मैं कालों का काल हूं, सबको वापस ले जाऊंगा, फिर तुमको अमरपुरी में भेज दूंगा। ये है मृत्यु लोक, छी छी दुनिया। इसलिए संगम को 100 वर्ष चाहिए, और तो हर एक युग 1250-1260 वर्ष का होता है। इस पिछाड़ी के संगम युग की आयु बहुत छोटी है, जैसे ब्राह्मणों की छोटी छोटी होती है, वैसे संगम युग की आयु भी छोटी है। फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो नए मकान आदि बनाने शुरू करेंगे। उसमें पहले श्री कृष्ण आता है, वे शौकीन है महल आदि बनवाने का। श्री कृष्ण शौकीन है महल आदि बनवाने का। उसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं, फिर दुनिया खत्म हो जाएगी तो नए मकान आदि बनाने शुरू करेंगे। उसमें पहले श्री कृष्ण आता है। अब श्री कृष्ण आएगा पहले तो कैसे वो बनवाएगा मकान, जबकि वन वन शुरू होना है नारायण से। वन वन श्री कृष्ण से शुरू नहीं होना, तो ये बात स्पष्ट करती है कि श्री कृष्ण संगम युग के सतयुग में जन्म लेता है और सतयुग के आदि महलों को बनवाता है। इस समय ब्रह्मा बाबा विष्णु रूप में, कृष्ण के रूप में जन्म लेकर सतयुगी महलों को बनवाने का कार्य कर रहे हैं। तो बंकर के रूप में बनेंगे और इस परिवर्तन में सुरक्षित रहेंगे। और जब श्री कृष्ण की आत्मा परम धाम जाकर वापस आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ी होगी तो उसे पूर्व जन्म की कोई बात याद नहीं, और आत्माएं भी जो आकर जो अपने शरीर को पहनकर खड़े होंगे उन्हें भी इस जन्म की, संगम युग की कोई याद नहीं होगी। और फिर शुरू होगा लक्ष्मी नारायण का राज्य सिंहासन पर बैठना और वन वन शुरू होना। वही कृष्ण की आत्मा भक्ति मार्ग में सोमनाथ का मंदिर बनवाती है। बिरला भी शौकीन है, कैसा अच्छा मंदिर बनाया है, नंबर वन में पूज्य है शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में भी पहले कैसा अच्छा मंदिर बनाया, नंबर वन में पूज्य है शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में भी पहले सोमनाथ का मंदिर, शिव बाबा का मंदिर बनता है। तो भी कुछ समय के बाद एकदम द्वापर शुरू होते ही नहीं, फिर पूजा शुरू होती। अभी तो है घोर अंधियारा, रात पूरी हो फिर दिन आता है। बाप कहते हैं मैं रात और दिन के बीच में आता, जब रात खत्म होने वाली है दिन शुरू होने वाला है मैं उस संगम पर आता। अमृत से वहां भारी लड़ाई भी है लिखा हुआ है कि यादवों के पेट से मुसल निकले जिससे सारे कुल का विनाश हुआ। तुम देख रहे हो बराबर विनाश के लिए तैयारियां कर रहे हैं, समझते हैं कोई प्रेरक है जो हमें प्रेर रहा है। दोनों ने विनाश के लिए बम बनवा कर रखे हैं, ये आफतें भी आनी हैं। तुम तो प्रतिकल में देख रहे हो, स्थापना भी हो रही है और विनाश भी सामने खड़ा है। समझो कोई ने विनाश नहीं देखा है। अच्छा वैकुंठ तो देखते हो ना, अच्छी तरह पढ़कर बाप से पूरा पूरा बेहद का वर्षा लेना है। तुमको साकार नहीं पढ़ाते हैं, शास्त्रों आदि की बात नहीं है, ये तो ज्ञान सागर स्वयं पढ़ाते हैं। तुम अपने को देही समझ, देही आत्मा समझ, मुझ एक बात क्यों याद करते हो, अर्थात मुझ एक बात की सेवा में उपस्थित होते हो। भगवानुवाद अपने बच्चों प्रति कहते हैं मैं तुम बच्चों के सन्मुख होता हूं, जो मेरे बच्चे बनते हैं उनमें से कोई सौतेले तो कोई मातेले भी है। बच्चों को ही वर्षे का हक है, वर्षे का अधिकार है। संशय बुद्धि को सौतेला कहा जाता है, उनको वर्षा नहीं मिल सकता, वे फिर पुरुषार्थ अनुसार प्रजा में चले जाते, मातेले राजाई में आ जाते हैं, वे बाप को प्यार करते हैं, बाप उनको प्यार करते हैं, गाते भी है ना तुम पर बलिहार जाऊंगा वारी जाऊंगा। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुमको मदद दूंगा, तो मैं तुमको मदद दूंगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत करो तो तुम्हें परमात्मा की मदद मिल सकेगी। सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना है। तुम कहते हो हम बाबा के हैं, ये सब कुछ बाबा का है, बाबा को हम कखपन देते हैं, बाबा को हम कखपन देते हैं और बदले में स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। इस पुरानी देह से हमारा ममत्व नहीं है, ये तो तमो प्रधान रोगी शरीर है, हमारे पास और क्या है। मनुष्य मरते हैं सब कुछ छूट जाता है, फिर उनका सब कुछ करनी खोर को दे दिया जाता है। हम सब कुछ आपको देते हैं। ममत्व मिटाने के लिए हम निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। माया फिर विघ्न डालती है, इसलिए धीरे धीरे जितना मेरी याद में टाइम देते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। वही मेरे गले का हार बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं, बाबा खुद कह रहे हैं, कितना सहज समझाते हैं, बाप समझाते हैं। ये रथ भी ड्रामा अनुसार मेरा मुकर्रर किया हुआ है और किसी में मैं आ भी नहीं सकता हूं। तुम भी कहते हो बाबा, कल पहले भी हम आपसे इसी ही मकान में इसी ही ड्रेस में मिले थे और आपसे वर्षा लिया था, तो कितना सहज है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी तरफ बुद्धि ना जाए। याद रखना, अंतकाल जो पुत्र सिमरे, अगर किसी को भी याद किया, संसार की किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, तो फिर वहां जन्म लेना पड़ेगा। कहां भी ममत्व नहीं रहना चाहिए। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, तो फिर वैश्या बने। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, उनकी कितनी महिमा करते हैं। एक ओंकार सतनाम सत श्री अकाल वाहेगुरु। उनको दूसरा शरीर मिलता ही नहीं, उनका एक ही नाम है। जो नाम बदली हो, नाम बदलता ही नहीं, क्योंकि आत्मा का नाम है। तुम तो 84 जन्म लेते हो तो तुम्हारे नाम भी 84 पड़ते हैं। बाप की महिमा में जाते हैं, निर्भय निर्वैर निरंजन। वही कालों का काल है, उन्हें काल खा नहीं सकता। मैं सभी को मुक्ति धाम में ले जाऊंगा निर्वैर, मेरा कोई से वैर नहीं है। तो मेरा कोई से वैर नहीं, अकाल मूरत अजूनी, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। गाया भी जाता है, दुख हरता सुख करता। कलयुग के दुख हरते हैं, सतयुग के सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग में जीवन मुक्ति, भारत में जब सतयुग था तो कैसे जीवन मुक्ति थी। बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। याद पड़ता है ना, तो जरूर बाप जब संगम पर आए हैं तब सबको शांति धाम ले जाए और तुमको फिर सुख धाम भेज, कितनी सहज बात है, भेज देंगे, फिर तुम्हें सुखदाम में भेज देंगे। परंतु माया ऐसी है जो यहां से बाहर गया तो वो जाएंगे, जैसे गर्भ जेल में धर्मराज के द्वारा जब तुमको सजा दिलाते हैं, दिलाता हूं, त्राही त्राही करते कि हम माफी मांगते हैं, फिर हम ऐसा पाप नहीं करेंगे, और बाहर निकलने से फिर भी पाप करने लग पड़ते। सत्युग त्रेता में माया होती है, सत्युग त्रेता में माया होती है, वहां तो सुख ही सुख रहता है। अभी तुम पढ़ रहे हो, इसमें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। बात कहते हैं देह सहित सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारा ये बेहद का संन्यास है, हमारा ये बेहद का संन्यास है। उन संन्यासियों का हद का संन्यास जंगल में जाकर फिर लौट जाए, आए जंगल में जाकर फिर लौट जाते हैं शहर में, कुछ रह जाते हैं, कुछ लौट जाते हैं। नाम कितना बड़ा रखवाते हैं, बाप कहते हैं मैं कितना शायद समझाता हूं, बुढ़ियाएं कितनी है कहती हैं हमको धारणा नहीं होती। अच्छा ये तो जानती हो कि परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, अच्छा ये तो जानती हो कि परमात्मा पढ़ाते हैं, वो कहते हैं सिर्फ मुझे एक बाप को याद करो, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। अभी हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, वे युवक 84 का चक्र पूरा किया, ये हुआ स्वदर्शन चक्र, स्वयं को चेक किया कि हम कैसे कैसे जन्म लेते हुए आत्मा को चक्र का दर्शन होता है, यहां ही निरोगी काया बनती है, चक्र के समझाने से तुम उच्च पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र धारी पर कितना सहज समझाते हैं, सहज याद सृष्टि चक्र, सहज सृष्टि चक्र, सहज याद सहज सृष्टि चक्र, कोई तकलीफ नहीं, ये है सच्ची कमाई। बाकी धन माल तो सब खत्म हो जाएगा, सब छूट जाता है, सब छोड़कर जाना है, सागर की में उथल खानी है, सागर को कहेगी उथल खाएगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। भारत सच खंड था, कोई भी और खंड नहीं था, भारत है शिव बाबा की जन्म भूमि, बड़े ते बड़ा तीर्थ, भारत में ही सोमनाथ का मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, अभी तो ढेर के ढेर बनाते हैं। अच्छा बाबा कहते हैं कि इस समय की शादी पूरा बर्बादी, शिव बाबा की पूरी बर्बादी है। शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी है। शिव बाबा साजन भी है, स्वर्ग में भेज देते हैं। तुम यहाँ आए हो, जानते हो हम निरोगी काया है। हम क्या हैं? हम यहाँ आए हैं, शिव बाबा साजन भी है, स्वर्ग में भेज देते हैं, स्वर्ग में भी भेजते हैं। तो तुम यहाँ आए हो, जानते हो हम यहाँ बरोबर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले। क्योंकि तो तुम्हारा लक्ष्य तो यही है, क्या मैं नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुषार्थ पुरुष ही बनेंगे, बदलेंगे, बदलते रहते हैं। कोई चोला पुरुष का, कोई स्त्री का। फिर सतयुग त्रेता कैसे बनता है वो भी समझाया गया है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज फुल गॉड फादर पढ़ाते हैं, मनुष्य पढ़ाते हैं, तो फादर टीचर गुरु के रूप में तीनों रूप में एक साथ, तीनों ही रूप में एक साथ। फादर और टीचर हो सकते हैं, तो फादर टीचर सतगुरु हो ना सके। तो गुरु लोग कहते हैं गुरु हो ही नहीं सकते जब तक तुम पहला गुरु नहीं। तो भी वो जिस्मानी विद्या, ये बाबा तो एकदम स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो हजार बार पूछ। मीठे मीठे चिट्ठी लधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, सपूत आज्ञाकारी पन विजय माला में पिरोना है। बाप को अपना कख पन दे जो किसी भी काम में आने वाला नहीं, बलिहार हो सबसे ममत को मिटा देना है। अंतकाल में एक बाप ही याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धि योग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व इच्छा से मुक्ति तत्व का सभी बाप दादा ने सभी मनुष्य बच्चों को, सभी बच्चों को आत्मा सहित सम्मान रूप से सब पर अधिकार किया, सभी को बुलाया है, निमंत्रण किया। विशेष लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकता। बाबा ने हमें समझाया कि बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिए, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा ही नहीं सकते, वास्तविक पर धारणा नहीं कर सकते, कार्य में नहीं लगाते, तो सफलता दिखाई नहीं दे। फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं। सोचते हैं शायद मेरा ही भाग्य ऐसा है, उन्हें से दूसरों की विशेषता व भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ऐसे दिल शिकस्त हैं। दिल शिकस्त होने वाली ईर्ष्या आपको दिल शिकस्त होने से बचा ले। इन बातों से बहुत मुक्त रहो। स्लोगन है, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। स्वार्थ स्व के लिए, स्व माना आत्मा। आत्मा के लिए तो पुरुषार्थ करे, परंतु स्वार्थ के बिना बिना सेवक सच्चे सच्चे सेवादार बनकर सेवा करना और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करो। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692207 पर। ओम।